Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Iska jorutne. Srimad Bhagavatam, anuvad, Sanskrit se angrezi, or Tatparya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke dwara, Skanda 3, Adhyay 6, Shlok Sankhya 30.
Mukhato Vartata Brahma.
Mukhato Vartata Brahma. Purushasya Purudvaha.
Yastu
Mukha Vad Varnanam. Mukhyo Bhut Brahmano Muhu.
Mukhato Vartata Brahma.
Mukhato Vartata Brahma. Purushasya Kurudvaha.
Yastu
Mukha Vad Varnanam. Mukhyo Bhut Brahmano Guru.
Anuvad evam tatparya Krishna Kripamurti Sri Srimad Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Dwara. Anuvad. Ek Guru Vansh ke Pradhan विराट के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ. जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं. तात्पर्य ऐसा भगवद गीता में 4:13 पुष्ट हुआ है कि मानव समाज के चारों वर्ण विराट रूप के शरीर के क्रमानुसार विकसित हुए. ये शारीरिक विभाग है मुख बाह कमर एवं तथा पांव. जो लोग मुख में स्थित है वे ब्राह्मण कहलाते हैं. जो बाहों में स्थित है वे क्षत्रिय कहलाते हैं. जो कमर में स्थित है वे वैश्य कहलाते हैं और जो पांव में स्थित है वे शूद्र कहलाते हैं. हर व्यक्ति भगवान के विश्व रूप में उनके शरीर में स्थित.
पुस्तक के चार में नहीं रखना.
अतएव चार वर्णों के रूप में किसी जाति को इसलिए निम्न नहीं माना जाना चाहिए कि वह शरीर के किसी विशेष भाग में स्थित है. हम अपने शरीरों में अपने हाथों या पांवों के प्रति अपने व्यवहारों में कोई वास्तविक भेदभाव नहीं बरतते. शरीर का अंग प्रत्यंग महत्वपूर्ण है. यद्यपि इनमें से मुख सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है. यदि अन्य अंगों को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो मनुष्य जीवित रह सकता है किंतु यदि उसका मुख काट दिया जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता. अतः भगवान के शरीर का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग उन ब्राह्मणों का वास स्थान कहलाता है जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं. जो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख न होकर संसारी मामलों के प्रति उन्मुख होता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता. भले ही वह ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण पिता से क्यों न उत्पन्न हुआ हो. ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने से कोई ब्राह्मण बनने का पात्र नहीं हो सकता. ब्राह्मण की मुख्य योग्यता वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुखता है. वे भगवान के मुख में स्थित होते हैं और इसलिए जो कोई वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होता है वह निश्चय ही ब्राह्मण होता है. वैदिक ज्ञान के प्रति यह उन्मुखता भी किसी विशेष जाति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है. किसी भी परिवार का तथा विश्व में किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हो सकता है और इससे वह असली ब्राह्मण होने के योग्य हो जाएगा. असली ब्राह्मण स्वाभाविक शिक्षक या गुरु होता है. वैदिक ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता. वेदों का सम्यक ज्ञान है भगवान को जानना और यही वैदिक ज्ञान का अंग अर्थात वेदांत है. जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त है और जिसे भगवान के विषय में कोई सूचना नहीं होती वह भले ही ब्राह्मण बन जाए किंतु वह गुरु नहीं बन सकता. पद्म पुराण में कहा गया है षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न पश्चात वैष्णवों से बचो गुरु निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है, किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वैष्णव के पद को अथवा भगवत पद को प्राप्त नहीं होता। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के निवाय यही कृष्ण तत्व वेदता से गुरु भवन। कोई व्यक्ति ब्राह्मण शूद्र या सन्यासी हो सकता है, किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्णात होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना है। जो कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है वह ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलताओं को जानता है गुरु बन सकता है।
शरीर के भिन्न भिन्न अंग है, जिनमें से भिन्न भिन्न कार्य करना है, जैसे हाथ से भिन्न भिन्न वस्तुओं को पकड़ना है, दूसरों को छापा मारा, ब्राह्मणों वैसे नहीं करते, कर सकते शिष्यों को। और पायों से भिन्न भिन्न स्थान जाना है, और मुंह में से क्या होते आश्वास निश्वास लेना है देना है, और भोजन लेना है, और विशेषकर मुंह से वो शब्दों जो निकलते वो सब बुद्धि के अनुसार होते, इसलिए कहलाते हैं कि एक व्यक्ति मूर्ख हो कि नहीं तो समझ जाते उसका वचन से। जब तक किसी व्यक्ति कुछ नहीं बोलते तब तक उसकी बुद्धि का क्या स्तर पर है समझ नहीं जाते। तो ब्राह्मणों समाज में श्रेष्ठ श्रेणी है, क्योंकि उनके मुख से वैदिक शब्दों आते हैं, उनका अधिकार है वैदिक शब्दों पाठ करना। और यहाँ पर कहा जाता है कि वो वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम पुरुष का मुख से निसृत हुए। पुरुष यहाँ पर पुरुष शब्द का अर्थ है विराट, विराट पुरुष। और सभी शास्त्रों से कहा जाता है कि सृष्टि के साथ पूरा जगत की सृष्टि के साथ गर्भाधक्षाय विष्णु जो महापुरुष है इनके मुख से वैदिक शब्दों निसृत हुए। तो वैदिक ज्ञान हम ऐसे कहते हैं वैदिक ज्ञान, वास्तव में वैदिक ज्ञान ज्ञान ही है, और उसके अलावा सब कुछ जो ज्ञान का नाम से चलते वो सब अज्ञान है। परंतु क्योंकि जगत में बहुत कुछ जो वास्तविक ज्ञान नहीं है ज्ञान का नाम से चलते, इसलिए वास्तविक ज्ञान का निर्धारण करने के लिए हम वैदिक ज्ञान बोलते। तो वो वैदिक ज्ञान प्रसिद्ध है कि वो अपुरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष से सृष्ट नहीं होते, वो सनातन है। अर्थात सृष्टि के पहले वो वैदिक ज्ञान उपस्थित था और सृष्टि और उसका संहार के पश्चात भी वो वैदिक ज्ञान रहेगा। तो कैसे रहेगा अगर कोई नहीं है वो ज्ञाता, ज्ञान है ज्ञेय और ज्ञाता। अगर कोई ज्ञाता नहीं है तो कैसे ज्ञान रहेगा? वो ज्ञाता है भगवान पुरुष, जिनके मुख से वैदिक शब्दों का निष्कास होता है। तो पुरुष से आते फिर भी अपुरुष से बोलते हैं। इसका अर्थ है कि वो वैदिक ज्ञान किसी साधारण पुरुष से सृष्ट नहीं होते, किसी असाधारण पुरुष से सृष्ट भी नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु वो ज्ञान की सृष्टि नहीं करते। वो भगवान जैसे सदैव अवस्थित होते, मौजूद होते, तो वो ज्ञान भी वैदिक ज्ञान सदैव मौजूद है। तो इस प्रकार वैदिक ज्ञान भगवान विष्णु से अभिन्न है, भिन्न और अभिन्न, क्योंकि ज्ञेय और ज्ञान का विषय वो ही भगवान विष्णु है। वैदैश्य सर्वैरहमेव वैद्यः। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान का विषय और ज्ञाता जो ज्ञान जानते हैं, तीनों विष्णु है। तो फिर भी वो विभाजन है, ज्ञान और ज्ञान का विषय भिन्न है फिर भी अभिन्न है। जैसे एक साधारण चीज है, इसको पेन बोलते हैं, यदि हम संस्कृत में कहना चाहते उसको लेखने बोलते, लेकिन लेखने बोल के कोई समझ नहीं आएगा। पेन पेन बोलने या तो पेन है, इसके बारे में हम क्या मालूम सकता? तो ऐसा आकार है और प्लास्टिक से बनाया और इसे नील का रंग कलेक्ट होते है। मैं देखता हूँ, आप नहीं देखते, मुझे विश्वास करना चाहिए। और इसका दाम कितना होगा? 30 रुपया। ऐसे एक्चुअली अमेरिका से आया तो शायद $3 ऐसे, जो ₹200 जैसे, क्योंकि अमेरिका में सब चीज़ का दाम ज़्यादा होता है। तो ये अमेरिका से आया है ये पेन। तो अभी आप सब ज्ञाता है पेन का विषय के बारे में, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, उदाहरण स्वरूप मैं बोलता हूँ। तो कि वो ये पेन अमेरिका से आया है, उसका दाम ₹200 ऐसे है, वो ब्लू इंक से लिख होता है, वो सब ज्ञान है पेन के बारे में नहीं? तो ज्ञान और विषय भिन्न है, परंतु इनसेपरेबल। वो शब्द क्या है? अभियोज, वो शब्द है नहीं, इनसेपरेबल अभियोज। तो इस प्रकार भगवान और वेद के शब्दों वैदिक ज्ञान अभी मतलब पृथक बनाना संभव नहीं है। भगवान कौन है? विष्णु। भगवान कैसे भगवान है? क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः, Jnana vairagya yoschaiva shannam bhaga itingena. Bhagavan ke asankhya sadguno se, jisse inko Bhagavan kahate. Koi dusra shabd se is inka pura varnan nahi hota. To sab aishwarya, virya, yash, sundarta, gyan aur vairagya in mein hai, isliye inko Bhagavan bolte. Aur wo Bhagavan Krishna hai. To ye sab gun jisse Bhagavan Bhagavan hote, to Bhagavan se abhinna hai. Aur sadaiva Bhagavan ke sath rehte. So phir bhi ve sab guno in se ek drishtikon se bhinna hai. To bhinna aur abhinna hai aise. To vaidik gyan apaurushaya hai. Arthat kisi ki kalpana se srisht nahi hai. Gyan to gyan hi hai. Jo vastavik gyan hai, to wo sadaiva rehte. Srishti ke pahle bhi. Wo srishti, sangha, pralay ke baad bhi. To is prakar, vaidya gyan apaurushaya hai. Bhagavan Vishnu swayam usko srishti nahi kiya. Kyunki ye Bhagavan ka ek vaibhav hai, sanatan vaibhav hai. Phir bhi wo gyan Bhagavan se aate hain. Hum kaise gyan milte? Bhagavan se. Aur hum visheshkar vaidik gyan brahmanon se milte. Brahman kaise brahman hote? To unka charitra swabhav se samajhna chahiye aur unke vachan se samajhna chahiye. Brahman to pandit hona chahiye. Pandit ka matlab jo vaidik gyan sampanna hai. Janmana jayate shudra. Janma ke anusar sab shudra hote. Jo pratam shreni, uttam shreni, brahmanon ke kul mein janma lete hai, to shishu, shishu ke roop mein shudra jaise hai. Shochati iti shudra. To bache to krandan karte hai, nahi? Shudra jaise. To thoda bada hone ke paschat unko vaidik gyan pradat hai. Aur uske pahle wo sadharan samajik vyavaha sikhane hai dhere dhere. To janmana jayate shudra. Sanskarad bhavet dvija. Upanayam samskar se ek brahman ki putra dvij bolte to dusra janm liya hai vaidik gyan se janm liya hai parantu dvij bolte parantu brahman nahi to kaise brahman hote ved paath karne se nahi veda paathat bhavet vipra bolte aur brahma janati brahman jo puri tarah ved parangat hote arthat sabhi vaidik gyan paath kiya hai grahan kiya hai hridayangam kiya hai sakshat kiya hai aur uske anusar jivan vyatit karte wohi vyakti brahman bolte. तो एक भूल धारणा है कि जो ब्राह्मण के परिवार में पुत्र के रूप में जन्म लेते ब्राह्मण होते नहीं। और एक और आधुनिक भूल धारणा है कि जो इस्कॉन में यज्ञ अनुष्ठान में यज्ञ सूत्र मिलते वो ब्राह्मण है, वो हम ऐसे व्यवहारिक बातचीत में हम ऐसा बोलते हैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण दीक्षित हम ऐसे बोल सकते हैं, परंतु उनका व्यवहार से और ज्ञान से देखना चाहिए कि वास्तविक ब्राह्मण है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी एक नया नई श्रेणी ब्राह्मण बनाना, पूरा मानव समाज का सन्मार्ग दर्शन देने के लिए, परंतु वो संभव नहीं होगा केवल यज्ञ सूत्र प्रदान करने से, प्रशिक्षण देना पड़ेगा वैदिक ज्ञान के अनुसार और सच्चरित्र के अनुसार। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म जानी थी ब्राह्मण, जो पूरी तरह जानते ब्रह्म क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो सर्वप्रथम उत्सुक होना चाहिए वो ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ परम सत्य, ब्रह्म शब्द का एक और अर्थ है वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, तो उत्साही होना चाहिए। और यहाँ पर यस्तु उन्मुख, जो उन्मुख है वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों ब्राह्मण भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद की आशा थी कि इनके शिष्यों और प्रशिष्यों उन्मुख होंगे, उत्साही होंगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म ज्ञान मतलब वैदिक ज्ञान, विशेषकर वो वैदिक शास्त्रों में उत्तम विषय का ज्ञान, और ज्ञान का उत्तम विषय है, क्योंकि त्रैगुण्य विषयो वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, बहुत कुछ है वैदिक शास्त्रों में ज्ञान जो भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के संबंधित है, और कैसे तीन गुणों में व्यवहार करना जिससे स्वाग प्राप्ति होती है, तो उसके ऊपर है ब्रह्म ज्ञान जो विशेषकर उपनिषदों से मिलते हैं। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषद यदप्यस्य तनुभा, भगवान का वर्णन ऐसे है कि वो ब्रह्म ज्योति में, अद्वैत ब्रह्म ज्योति में जिसमें अद्वैतवादियों लीन हो जाना चाहते, वो भगवान का अंग से ज्योति, अंग ज्योति। तो ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों से मिलते है, और वो सब ब्रह्म ज्ञान और सब वैदिक शास्त्रों का विश्लेषण करना और परम सिद्धांत निष्कासित होते हैं ब्रह्म सूत्रों में, वेदव्यास्कृत ब्रह्म सूत्रों में, जो वेदांत सूत्र भी बोलते हैं। और वो वेदांत सूत्रों में वो ज्ञान जो है उसका, वो सब ज्ञान का पूरा व्याख्या है यही श्रीमद् भागवतम में। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के लिए श्रीमद् भागवत का ज्ञान संपन्न होना चाहिए, जिसका सार अंश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान है, वे सेव्य है, इनकी सेवा करना चाहिए सभी जीवों से, और हम सेवक है। कलयुग में बहुत ब्राह्मण है या थे, आजकल हम ऐसे ब्राह्मण कम देखते हैं, पहले बहुत थे जो एक श्रेणी थे जो कर्म उन्मुक्त थे। ऐसे ब्राह्मण जो वेद शब्दों विशेषकर यज्ञ में उच्चारण करने से तो स्वर्ग प्राप्ति चाहते थे, और एक श्रेणी है ब्रह्मवादी जो उपनिषदों का ज्ञान का अपूर्ण व्याख्या करने से सिद्धांत निष्कर्ष करते कि परम सत्य निराकार है, निर्विशेष है, और उनका सिद्धांत है कि सिद्धि में ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता एक होते। तो ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता एक होते हैं, इसी प्रकार सब विष्णु है। नारायणम परम ज्ञानम, परम ज्ञान है नारायण से अभिन्न, क्योंकि परम ज्ञेय है ज्ञान का विषय नारायण। तो इस प्रकार जैसे ज्ञान और ज्ञेय अभिन्न है, तो फिर भी भेद है, क्योंकि ज्ञाता भी है। जैसे ये पेन है और उसके बारे में ज्ञान है, और कौन जानते हैं, मैं जानता हूँ, तो मैं एक पेन के बारे में ज्ञान का ज्ञाता हूँ। मैं क्या जानता हूँ कि पेन अमेरिका से आया, उसका दाम ऐसे है और ऐसे काम करते हैं इत्यादि। तो ज्ञान भगवान है, यह भगवान है, और ज्ञाता भी भगवान है, और हम भी ज्ञाता हो सकते हैं। इसलिए भगवान ब्राह्मणों के द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं, विशेषकर सृष्टि के समय वो ज्ञान जो भगवान के श्रीमुख से निसृत हुए, वैदिक ज्ञान। तो वो ज्ञान भगवान नारायण प्रथम ब्राह्मण चतुर्मुख ब्रह्मा को हृदय में संचार किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि आदि कवि आदि ब्राह्मण ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किए भगवान, और ब्राह्मणों द्वारा ये ज्ञान मानव जाति में प्रसारित होते हैं। तो हम भी ज्ञाता हो सकते, परंतु हम कभी भी नारायण नहीं हो सकते। ये ब्राह्मण जो निर्विशेषवादी है बोलते हैं कि ज्ञान ज्ञाता और ज्ञानी सब एक ही है, क्योंकि उनकी आशा है, असंभव आशा, कि वे ज्ञानी होने से ब्रह्मा शब्दों वैदिक शब्दों उच्चारण करने से उनकी आशा है कि वे स्वयं नारायण बन जाएंगे। और कथित है शंकर अद्वैत संप्रदाय में ही Dandagrahena matrena naro narayano bhavet. Bolte ki sanyas, danda, grahan karne se ek nara, jo sadharan vyakti hai, swayam narayan ban jate. To iske bare mein hame kya bolna hai? Dandagrahena matrena naro narayano bhavet. Shlok hai nahi? Praman hai nahi? नहीं संस्कृत में है और श्लोक है लेकिन प्रमाण तो नहीं है क्योंकि वैदिक शब्द नहीं है तो सभी भाषा में हिंदी में अंग्रेजी में गुजराती में तो सभी भाषाओं में बकवास बोलना संभव है संस्कृत में भी ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ संस्कृत में कहना है तो वो प्रमाण है ऐसा नहीं है सामान्यतः हम जो हमारी भाषा में बीच बीच कुछ संस्कृत बोलते हैं हम शास्त्र से बोलते हैं इसलिए हम हमारी ऐसी धारणा है कि जो भी संस्कृत में कहते थे वो वैदिक प्रमाण है लेकिन वैसे नहीं है सब कुछ जैसे अंग्रेजी हिंदी जापानी सभी भाषाओं में बोलना है तो संस्कृत में भी बोल सकते जैसे चाणक्य पंडित का वचन है वो क्या है भस्मीभूत हस्य ऋणंकृत वा घृतंग पिबत चार्वक 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 की उक्ति है ऋणंकृत वा घृतंग पिबत यावत जीवत सुखं जीवत भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत् विनंकृत वा घृतं पिबेत् तो हम ये वचन के पूरा विरोध नहीं करते जैसे तैसे घी लो और भगवान के लिए अलग अलग आइटम बनाओ भगवान को अर्पण करके वो प्रसाद ले लो यावत जीवत सुखं जीवत जब तक रहते हो तब तक सुखी जीवन व्यतीत करो तो उसके विरुद्ध हम भी नहीं है लेकिन कैसे सुखी होना हमें मालूम है इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है भस्मीभूतस्य देहस्य वो भी हम सहमत करते प्रमाण ही है अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते तो शमशान जाओ भोपाल में विराट है बड़ा है ना वो तालाब के पास या नदी के पास तो अगर किसी का संदेह है इसमें तो जाए किसी भी समय आप जा सकते और देखेंगे तो कैसे शरीर तो खाली उसका ज्वलाने के बाद तो भस्म होते हैं साई बाबा भी भस्म देते हैं कहाँ से मिलते हैं शमशान से मालूम नहीं लेकिन वो अंत में क्या बोलते हैं इस श्लोक में श्लोक भी है श्लोक का मतलब कुछ शब्दों का विशेष व्यवस्था देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत् प्रश्न के रूप में बोलते हैं कि वापस आना कैसे होगा मतलब उसका प्रचार है कि शरीर का समाप्ति होती है उसके बाद सब कुछ समाप्त होते हैं आत्मा नहीं है पुनर्जन्म नहीं होते तो जो वैदिक ज्ञान नहीं है तो सुंदर संस्कृत मधुर संस्कृत शब्दों से उच्चारित होते हुए भी तो अज्ञान होते तो दंडग्रहेण मात्रेण नरो नारायणो भवेत् सच सच है कि नहीं हाँ नारायण कौन है असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी तो दंड ग्रहण और वैष्णव तो खाली एक दंड ग्रहण नहीं करते, तो चार इसके अंदर चार दंड है, तो उसका अर्थ क्या है? तो सामान्य नारायण से वे चार गुण बड़े है, उसका अर्थ क्या है? ये सब बात की कोई अर्थ नहीं है। जो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम दंड ग्रहण करने से एक व्यक्ति नारायण होते हैं, संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो वैदिक ज्ञान पर उन्मुख है, इसका अर्थ है जो सचमुच वैदिक ज्ञान ज्ञान ग्रहण करने चाहते हैं। अद्वैत संप्रदाय में बहुत है ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी जो बहुत बहुत श्लोक और सूत्रों वेदांत सूत्रों को मुखस्त किया, परंतु वास्तव में वे वैदिक ज्ञान से विमुख है, उन्मुख नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्ञान का वास्तविक अर्थ कि वैदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, वे ग्रहण नहीं करते, वो ज्ञान से विमुख है। और यदि डोंगी जैसे उन्मुख होते, हाँ हाँ हम ग्रहण करते भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान की ज्ञ है और भगवान कृष्ण नारायण सबसे ऊपर है, ग्रहण करते लेकिन बोलते कि और मैं भगवान हूँ, तो इसलिए जो वास्तविक ब्राह्मण है उनका कर्तव्य वास्तविक वैदिक ज्ञान परिवेशन करना, क्योंकि ये पूर्ण भूल धारणा है कि नार और नारायण एक ही है या एक ही हो सकते, या मुक्ति का अर्थ है स्वयं को भगवान बनाना। ये भूल धारणा बहुत बहुत प्रचलित है, नहीं विशेषकर ये हिंदी भाषी अंचल में और सब प्राय सब स्वामी पंडित जो आते हैं कहाँ आते हैं भोपाल में टीवी में भी आते हैं ऐसे ही बोलते हैं, नहीं आजकल तो उसके बारे में नहीं बोलते, वो स्वामी सब क्या बोलते हैं, योग करना किसी को नफरत नहीं करना ऐसे बोलते हैं, वैदिक शब्दों नहीं बोलते, और आज तक कुछ ऐसे है जो वैदिक ज्ञान बोलते हैं परंतु कि सब एक है, सब कुछ एक है ऐसे बोलना चाहते, और जैसे उनका स्वभाव बहुत नरम है मधुर है ऐसे दिखाते, परंतु यदि हम कहेंगे कि सब कुछ एक नहीं है, अनेक जीव है, एक परम है, नित्यो नित्यानं चैतनस चैतनानं एको बहनाम यहो विदधाति कामा, कृष्णा परम सत्य है और हम सब कृष्ण से अधीन है, हम कृष्ण से सेवक है, फिर हम देखेंगे कैसे ये सब मायावादी क्रुदित होते, नहीं 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 हम स्वीकार नहीं करते कृष्ण भगवान नहीं है, व्यास भूल किया ऐसा लगा, ऐसा मायावादी है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें यही वैदिक सत्य ज्ञान मुख से भी कहना पड़ेगा। आजकल ऐसा है कि लोग की आशा है अगर कोई स्वामी साधु भगत आते हैं तो कुछ मनोरंजनी बात कहेंगे, लेकिन वो तो शूद्रों के लिए, मनोरंजन तो शूद्रों के लिए है और वैदिक ज्ञान ब्राह्मणों के लिए है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की आशा थी इनके शिष्यों ब्राह्मण होंगे, ब्रह्म ज्ञान परिवेशन करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो इनके शिष्यों को श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कक्षा में वैदिक ज्ञान प्रदान किया शास्त्र के अनुसार, मनोरंजन ही बात नहीं है। तो सब लोग तो ये तत्व ज्ञान में रुचि नहीं लेगी, तो फिर भी तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कहना चाहिए, जिससे समाज में बुद्धिजीवी लोग, मेधावी लोग वो सत्य ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। हम यदि नहीं कहेंगे कौन कहेंगे? जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिले और प्रभुपाद की कृपा से ब्राह्मण के पद पर, जो समाज में श्रेष्ठ है, ब्राह्मण के पद प्राप्त किया है, उनका कर्तव्य है ब्रह्म ज्ञान प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद जैसे ही प्रचार किए और जड़ से कहना पड़ेगा कि ब्रह्म सत्य ही है, वो ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म है कृष्ण, और हम भी ब्रह्म है, हम कृष्ण से अधीन है, वे स्वतंत्र भगवान है, हम परतंत्र जीव है। और इसलिए जगन्नाथ रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद का एक प्रिय योजना है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ के सामने हम सब दंडवत प्रणाम करने चाहिए और इस प्रकार सबको दिखाना है कि वे सेविया है, वे वेद्य है, वे सेविया है और हम सेवक है। यहाँ पर भोपाल में मुसलमान संख्या बहुत है और उनका धर्म में एक सख्त नियम है कि अल्लाह के अलावा और किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना है। तो उनको समझाना रथ यात्रा के द्वारा कि वो अल्लाह जिनको वे प्रणाम का दंडवाद करते हैं वो जगन्नाथ है, एक ही है। उनका सिद्धांत है या धारणा है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो यही रूप है जगन्नाथ का रूप। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाना कठिन है, परंतु यदि भगवान का रूप दर्शन मिलेंगे और यदि हरि नाम सुनेंगे और यदि देखेंगे तो कितना उत्साह से भक्त जय जगन्नाथ हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो वे यदि वास्तव में अल्लाह के भक्त है वे प्रभावित होंगे और वे भी विचार करेंगे कि ये सब लोग जो कहते हैं वो हराम नहीं है, ये उत्तम ही है। और ऐसे सबका सनातन कल्याण होते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के द्वारा। रथे तु वामनं दृष्ट्वा पर पुनर्जन्म न विद्यते, शास्त्र में कहा गया है। तो जो वामन के रूप रथारूढ़, वामन के रूप का दर्शन करते वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते, अर्थात वे मोक्ष वो दर्शन करने से वे मोक्ष के पथ पर आ जाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तो सभी प्रकार मंगलमय है, जैसे भगवान जगन्नाथ स्वयं मंगलमय है। और साथ साथ पूरा जम के कीर्तन करने के साथ श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक से संकीर्तन होने चाहिए। और वो भक्तों की भक्ति देखने से लोग जो पुस्तकें लेंगे तो उत्साही होंगे वो पढ़ने के लिए, क्योंकि भारत में विशेषकर हिंदी भाषा में गीता प्रेस से बहुत धार्मिक पुस्तक प्रकाशित है। तो लोग क्यों श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें को विशेष महत्व देंगे, बहुत है नहीं गीता प्रेस के, और बहुत है हिंदी भाषा में बहुत बहुत धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित है। तो लोग क्यों श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें को विशेष महत्व देंगे? महत्व देंगे यदि देखेंगे कि लोग जो यही सब उपदेश के अनुसार जीवन उत्सर्ग करते हैं, तो उत्सर्ग करने से तो कितना आनंदित हो गया है और कैसे उत्सर्ग करते ये खाली पुस्तकी ज्ञान नहीं है। लोग जो ये सब उपदेश पालन करते हैं तो पूरा जीवन परिवर्तन करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ये सब वैदिक नियमों पालन करते हैं सच्चरित्र बनाने के लिए, मांसाहार वर्जन करना, अंडा मत्स्य आहार वर्जित होते और ये सब नियम पालन करते हैं। वो पूरा जीवन उत्सर्ग करते हैं कृष्ण भक्ति में, तो कैसे संभव है? वो मन में ऐसा प्रश्न जागृत होना चाहिए। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा तो पूरा आनंद से उद्यापन करना चाहिए, तो स्वाभाविक आनंद होते भगवान जगन्नाथ की सेवा में, विशेषकर रथ यात्रा में। तो जिससे दूसरों भी प्रभावित होंगे वो आनंद से, ये महोत्सव जो हम प्रतिदिन मंदिर के अंदर पालन करते हैं तो बाहर भी करना है। मंदिर के अंदर हम प्रतिदिन कीर्तन करते हैं और भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं, तो बाहर करना है, जिससे वो पूरा भोपाल नागरी एक मंदिर बन जाएगा कम से कम एक दिन के लिए। और सब लोग तो बिना प्रयास से बिना श्रम से भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलेंगे। हरे कृष्ण।